हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में इस्कॉन चंडीगढ़ से ऋषि रंजन प्रभु, और ऋषि रंजन प्रभु वैसे जम्मू से हैं और NIT जम्मू से उन्होंने अपना बीटेक किया था, और फिर चंडीगढ़ में जब ये जॉब कर रहे थे तो भक्तों के संपर्क में आए 2004 में, और 2007 में उन्होंने वहाँ फुल टाइम ज्वाइन किया इस्कॉन चंडीगढ़ में। तब से वहाँ पे सेवारत है, और इनकी मुख्य सेवाएं हैं यूथ रीचिंग, DT वर्शिप और न्यू भक्त ट्रेनिंग। बहुत ही गंभीर भक्त है ऋषि रंजन प्रभु और बहुत ही विनम्र। तो आज हमारा सौभाग्य है कि ये और इसके षडगुरु प्रकाश प्रभु यहाँ पे हैं चंडीगढ़ मंदिर से। तो आप सब भक्त अपना मोबाइल फोन ऑफ कर सकते हैं और एक बार दोनों भक्त का हरे कृष्ण नाम बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवतम अध्याय स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 30। देहादिभिर् दैवतंत्रे आत्मनः सुखम् इहत दुःखात्ययम् चानिशस्य क्रिया मोघा कृताः कृताः। देहादिभिर्दैवतंत्रे आत्मनः सुखम् इहतः आत्मनः सुखम् इहतः दुःखात्ययम् चानिशस्य दुःखात्ययम् चानिशस्य क्रियामोघा कृताः कृताः क्रियामोघा कृताः कृताः। गोपाल की जय। शब्द देहादिभिर् शरीर मन अहंकार तथा बुद्धि से दैवतंत्रे परम शक्ति के अधीन आत्मनः आत्मा का सुखम सुख इहत खोज करते हुए दुखात्ययम् दुखों की कमी च भी अनिशस्य भौतिक प्रकृति के पूर्णतया अधीन जीव क्रिया कार्यकलाप तथा योजनाएं मोघा कृता कृता पुनः पुनः व्यर्थ हो जाती हैं। अनुवाद, जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीव के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतएव जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंततो गत्वा निष्फल हो जाती हैं। द लिविंग एंटिटी ट्राइज टू अचीव हैप्पीनेस एंड रिड हिमसेल्फ द कॉजेस ऑफ डिस्ट्रेस, बट बिकॉज द वेरियस बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज आर अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ मटेरियल नेचर, ऑल हिज प्लान्स इन डिफरेंट बॉडीज वन आफ्टर अनदर आर अल्टीमेटली बैफल्ड। तात्पर्य, चूंकि भौतिकवादी व्यक्ति इस घोर अंधकार में रहता है कि प्रकृति के नियम किस प्रकार चूंकि भौतिकवादी व्यक्ति इस घोर अंधकार में रहता है कि प्रकृति के नियम किस प्रकार उसके कर्मों के अनुसार उस पर प्रभाव डालते हैं, इसके अंधकार में रहता है, अतएव वह भूल करके आर्थिक विकास के उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से पुण्य कर्मों द्वारा तथा अन्य विधियों से मनुष्य जीवन में शारीरिक सुपास भोगने की योजनाएं बनाता है, बॉडीली कंफर्ट, किंतु वास्तव में वह अपने कर्म फलों का शिकार बनता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीवों के अंतस्थल में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जैसा कि भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। जीव की इच्छाएं तथा कार्यकलाप परमात्मा द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि वे उपदृष्टा हैं और वे जीव की विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को आदेश देते हैं, जैसा कि भगवद गीता 18.61 में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भगवान सबों के हृदय में आसीन रहते हैं और जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार भगवान उसे विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो यंत्रों के समान है। जीव ऐसे यंत्र पर आरूढ़ होकर प्रकृति तथा उसके गुणों के वशीभूत रहकर ब्रह्मांड भर में घूमता है। इस तरह जीव कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु भौतिक प्रकृति के पूर्णतया अधीन रहता है और यह भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण नियंत्रण में रहती है। ज्यों ही जीव भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, त्यों ही उस पर प्रकृति का नियंत्रण हो जाता है जिसका अधीक्षण परमात्मा द्वारा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य बारंबार योजनाएं बनाता है और निराश होता रहता है, किंतु मूर्ख होने के कारण वह इस निराशा का कारण नहीं समझ पाता। इस कारण का स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरित्यया। चूंकि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, अतएव उसे भौतिक प्रकृति तथा उसके कठोर नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है। इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय परमेश्वर की शरण ग्रहण करना है। मनुष्य जीवन में जीव को यह उपदेश परम पुरुष कृष्ण से ग्रहण करना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सुख प्राप्ति करने और दुख भोगने की योजना मत बनाओ, तुम इसमें कभी सफल नहीं होगे, तुम केवल मेरी शरण में आओ। किंतु दुर्भाग्यवश वह भगवद्गीता में स्पष्ट रूप में दिए गए परमेश्वर के इस आदेश को स्वीकार नहीं करता। इस तरह मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियमों का नित्य बंदी बन जाता है। इत्यर्थात् कर्मण्येत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यदि मनुष्य विष्णु या यज्ञ नाम से विख्यात कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म नहीं करता तो वह कर्म फलों के बंधन में फंस जाएगा। ये बंधन पाप तथा पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य उच्च लोकों को जाता है और पाप कर्मों से अधम जीव योनियों को प्राप्त होता है, जिनमें वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाता है। जीवन की अधम योनियों में विकास प्रक्रम पाया जाता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ देयर इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जीवन की अधम योनियों में विकास प्रक्रम पाया जाता है और जब इन योनियों में जीव के बंधन या दंड की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे पुनः मनुष्य जीवन प्रदान किया जाता है और इसका अवसर दिया जाता है कि वह किस तरह योजना बनाए। यदि वह अवसर को पुनः खो देता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः डाल दिया जाता है और संसार चक्र में कभी वह नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। जिस प्रकार चक्र या पहिया कभी नीचे कभी ऊपर जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के कठोर नियम जीव को कभी सुखी बनाते हैं तो कभी दुखी। सुख दुख के चक्र में वह जिस प्रकार कष्ट उठाता है उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधावृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च उपासिन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंजाबी बाग के सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार पंजाबी बाग आया तो यहाँ पे बहुत प्रेम से मुझे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं और इतना आदर के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ सेवा कर पाऊँ इसलिए ये सेवा कोशिश कर रहा हूँ। पंजाबी बाग के भक्तों के बारे में काफ़ी कुछ सुना था पहले कि हमारे एक भक्त हैं चंडीगढ़ में ब्रह्मचारी, वो यहीं से हैं, तो वो काफ़ी कुछ काफ़ी ग्लोरिफिकेशन बताते थे। यहाँ के भक्त बड़े ऑस्टियर हैं और मतलब छोटे से मंदिर में उन्होंने काफ़ी सारे उन्नति की है, मतलब एक्सपेंड किया है। तो यहाँ पे आके पता चला कि हाँ वाइब्रेशंस हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, डिवोशनल वाइब्रेशन भक्तों के आचरण से समझ में आता, प्रेम से। और मैं वैसे भी कुछ मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है भक्ति में भी, थोड़े कुछ ही साल हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ सेवा के लिए। वैसे भागवतम पे कुछ बोलना इसके बहुत ऊंची क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए। ये मैं इसी अध्याय में नौवें श्लोक में पढ़ रहा हूँ। श्रीमद्भागवतम परमहंसों श्रीमद्भागवतम परमहंसों के निमित्त है। निमित्त मतलब meant for. Srimad Bhagavatam is meant for Paramahansas. जब तक कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक वह श्रीमद् भागवत को समझने के योग्य नहीं होता. समझने के योग्य नहीं है तो फिर बोलने के योग्य तो बिल्कुल नहीं. वैष्णव संप्रदाय में परमहंसों या सन्यासियों का प्रथम कर्तव्य धर्म प्रचार है. आगे फिर और कुछ दूसरे टॉपिक है सन्यासी के बारे में. तो सभी भक्तों की ब्लेसिंग से मैं कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता हूँ. ये टॉपिक चल रहा है सिद्ध पुरुष का आचरण. ये प्रहलाद महाराज अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं, मतलब एक किंग होने के नाते वो सेंटली एसोसिएशन की मतलब साधुओं के संग की इच्छा से अपने राज्य में घूम रहे थे. तो उनको ये एक व्यक्ति मिले थे वहाँ पे साइड में, मतलब काफ़ी हटे कटे थे और ऐसे धूल और मिट्टी से लिपटे हुए. तो नॉर्मल व्यक्ति, अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो एकदम से उसकी बाहरी शारीरिक अवस्था को देख के कुछ नेगेटिव आता है मन में कि ये आलसी व्यक्ति है, ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ काम धंधा नहीं करते बोलते. तो अभी प्रहलाद महाराज को यह समझ में आ गया कि ये कोई उच्च सेल्फ साक्षात्कार वाले व्यक्ति हैं, एडवांस्ड व्यक्ति हैं. कैसे समझ में आया? तो मतलब उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में एक फर्क है. उनको कैसे पता चल गया, मुझे क्यों नहीं पता चलता, या ना मेरी चेतना की स्थिति में हमें क्यों नहीं पता चलता? तो एक सन्यासी महाराज बताते हैं कि भगवान ये यथा माम प्रबोधयन्ति. भगवान हमें वो चीजें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं. अगर मैं कृष्ण के लिए असली लालसा है तो कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्रकृति के द्वारा ही या भगवान के अरेंजमेंट से. तो अगर उल्टी लालसा है, मतलब भगवान की तरफ ना जाने की लालसा है, दूसरी तरफ जाने की, भूलने की लालसा है, तो उसके लिए भी भगवान अरेंजमेंट करते हैं. तो प्रहलाद महाराज की वास्तविक इच्छा थी साधु संग करने की और कृष्ण का संग करने की, साधुओं के द्वारा कृष्ण का संग करने की. तो इसलिए भगवान ने उनको ये बुद्धि दी कि उनको वो सेंटली वो व्यक्ति में साधु नजर आया. इसका उल्टा भी है. आप हिरण्यकशिप भी घूमता था, उनके वंश में है, वो भी राजा है वो भी घूमते थे या अपनी सेनाओं को भेजते थे पीछे, हमने पढ़ा हो. लेकिन वो क्यों भेजते थे? उनको तंग करने के लिए. अपनी आर्मीज को भेजते थे कि जाओ साधुओं को तंग करो, ब्राह्मणों को तंग करो. तो मतलब दृष्टि का फर्क है, उनकी चेतना अलग है, इनकी चेतना अलग है. और जिस तरह की हमारी इच्छाएं हैं, जिस तरह की हमारी लालसा है, उसके अनुसार ही हमें व्यक्ति दिखते हैं. और उन मतलब मैं किस व्यक्ति की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, किस व्यक्ति को इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर इन द सेंस नॉट रिस्पेक्टिंग. मैं मेरे मन में उनके प्रति उतनी रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट है लेकिन फॉलो नहीं कर रहा हूँ. तो ये भी वहीं से डिसाइड होता है कि मेरी जो इच्छा है फिर उसके अनुसार भगवान मुझे किसी व्यक्ति में गुण दिखाते हैं और फिर मैं उसको फॉलो कर उन व्यक्तियों को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ. तो मतलब मेरी जो श्रद्धा है वो भी भगवान ही बनाते हैं मेरी इच्छाओं के अनुसार. ये भगवद्गीता में भी है ना, देवी देवताओं के ऊपर मेरी जो अटूट श्रद्धा है वो भगवान बनाते हैं. या हम शिशुपाल के केस में भी देख सकते हैं. शिशुपाल सिर्फ दृष्टि नहीं, हमारी श्रद्धा भी, मतलब हमारे जो बिलीफ हैं वो भी भगवान बनाते हैं। शिशुपाल नहीं चाहता था भगवान के प्रति आदर करना, तो भगवान ने उसकी ऐसा बिलीफ उनके अंदर डाला, श्रद्धा डाली, कि उनको भगवान के अंदर कुछ अच्छा दिखता ही नहीं था, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो कुछ मेंटल एडजस्टमेंट करते थे भगवान को, भगवान ना देखने के लिए उनका बिलीफ था ये कि ये भगवान नहीं है, ये गलत व्यक्ति है ना। तो ये एक पॉइंट कि जिस तरह से हमारी इच्छाएं होती हैं उस तरह से हमें व्यक्ति या हमें संघ प्राप्त होता है भगवान के अरेंजमेंट से, या होता है उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो होते हुए भी मैं उसको कैच नहीं कर पाऊंगा, वो चला जाएगा, चांस चला जाएगा। जैसे एक ही संघ में एक ही मंगल आरती सारे भक्त अटेंड करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम सारे एक भक्त अटेंड करते हैं, एक ही भागवतम या जो भी सुबह प्रोग्राम होता है, क्लास होती है, वही सुनते हैं, ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल होता है सबका, सेवाओं की टाइम पीरियड भी सेम होता है, लेकिन कुछ भक्त एडवांस कर जाते हैं, कुछ थोड़े उतने नहीं कर पाते इच्छा के अनुसार। मतलब हमें अपॉर्चुनिटी होते हुए भी दिखती नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं होती अगर मेरी इच्छा नहीं है, ज़्यादा इच्छा नहीं है। जितनी इच्छा है उसके अनुसार मैं दूसरों में गुण दिखेंगे, फिर उसके अनुसार मैं उसको फॉलो कर पाऊँगा या आगे बढ़ने की कोशिश कर पाऊँगा। तो ये एक पॉइंट है कि प्रहलाद महाराज की प्रगाढ़ इच्छा थी तो वो उनको वो साधु मिल गए। ये भी हो सकता कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले भी गए होंगे उसी रास्ते पे, लेकिन किसी ने पहचान नहीं, किसी को पहचान भी नहीं आया। या वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है कि भक्त अवेलेबल हैं जो गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, आचरण से हमें एक हायर लेवल उच्च स्थिति दिखा रहे हैं, लेकिन कैच नहीं होता, उनमें इच्छा कम है। एक पॉइंट दूसरा ये इसमें एक और अच्छी बात है कि जब संघ उनको मिल गया तो उसके बाद उन्होंने उनसे सुना, और बड़े अच्छे से सुना ध्यानपूर्वक। मतलब हालांकि ये वही उपदेश दे रहे हैं जो प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में दे चुके हैं पहले। प्रहलाद महाराज जो नरसिंह भगवान के समय प्रकट होने के समय जो टीचिंग्स दी थी उसमें ये सारा कुछ है कि तदपि दुख जो औषधि है वो भी दुख है। मतलब जो दवाई है वो भी एक दुख का कारण है, जो दुख को निवारण करने के जो मटेरियल सॉल्यूशंस हैं। तो लेकिन फिर वो सुन रहे हैं, और वो कब दिए थे प्रहलाद महाराज ने, जब वो 5 साल के बच्चे थे। मतलब उनके मन में ऐसा नहीं आ रहा कि ये तो मैं 5 साल से जानता हूँ, ये जो आप बता रहे हो तुम मैं छोटा बच्चा था अभी तो मैं राजा हूँ और मैं मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो चुका है इतने साल, और अभी मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो अभी इसमें क्या नई बात है तो आगे शायद ये पॉइंट पे आता है कि वो बड़ा उसको ई वॉज फीलिंग एनलाइटेंड बाय दिस वर्ड्स। तो हाँ ये भी पार्ट है कि एसोसिएशन में ये जो फॉल्स ईगो वाला फैक्टर है इसकी वजह से हम सुन नहीं सकते। फॉल्स ईगो मतलब अपनी डेजिग्नेशन से कि मैं ऊंचा हूँ, या अपने एक्सपीरियंस नॉलेज की वजह से कि मैं ऊंचा हूँ, तो वो सुन नहीं पाते। मतलब एसोसिएशन होते हुए भी हम लाभ नहीं ले पाते। और महान मतलब एक्चुअली किसी व्यक्ति की महानता जानी जाती है कि हाउ ही इज ओवरकम हिज फॉल्स ईगो, ना कि हाउ हैज इंक्रीज्ड हिज फॉल्स ईगो, कैसे वो उच्च पदवी में पहुंच गया, इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बन गया, कितना धन का ओनर है, ये कंट्रोलर है, हिरण्यकशिपु जैसे था, लेकिन उनको महान नहीं माना जाता। तो ये एक पॉइंट है कि सब में से विनम्र भाव से श्रवण करें तो वो एसोसिएशन उनको लाभ मिलता है, प्रॉपर लाभ। एक फिर आगे जो प्रभुपाद जी जो इस श्लोक में या जो श्लोक है, जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, ये अवधूत ही बोल रहे हैं, शिक्षा दे रहे प्रहलाद महाराज को। लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वह अंततो गत्वा निष्फल हो जाती हैं। अभी ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसके बारे में एक बड़ी अच्छी लाइन लिख रहे हैं। परिणाम मतलब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का परिणाम यह होता है कि मनुष्य बारंबार योजनाएं बनाता है और निराश होता रहता है, किंतु मूर्ख होने के कारण वह इस निराशा का कारण नहीं समझ पाता। यह कारण स्पष्ट उल्लेख किया गया है भगवद गीता में, देवी यशा गुणमयम माया दुरत्य। तो साधु संग करने का या अच्छा संग करने का ये लाभ है कि जो जो हमें नहीं दिख रहा इस निराशा का कारण समझ नहीं पाता, हालांकि ये सबके साथ हो रहा है कि मैं प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, एफर्ट भी कर रहा हूँ, और बाद में अल्टीमेटली निराश होता हूँ हर एफर्ट में, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि निराशा का कारण क्या है। समझ में नहीं आता तो एक ही चीज समझ में आती है कि मेरा एफर्ट कम था, मुझे नया प्लान बनाना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए जो लोग भौतिकता में आगे बढ़े हुए हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं अलग अलग, स्टॉक कंसल्टेंट्स या मेडिकल कंसल्टेंट्स जो भी अलग अलग जो कि इस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे राय लेनी चाहिए पे करके। तो उनसे राय लेके फिर मैं उस पर मेहनत करता हूँ, फिर से कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, फिर एफर्ट करता हूँ। और मान लो कि एक पूरा जीवन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, मैं अपने बुद्धि से या ऐसे मटेरियल कंसल्टेंट्स के द्वारा अच्छे से जीवन चला लिया, तो भी एक लाइफ के लिए प्रोफेसर लेक्चर्स में बोलते हैं कि किसी तरह से मैंने मटेरियल एडजस्टमेंट करके अपना ये वाला जीवन सुखी कर लिया, तो अल्टीमेटली भगवान मृत्यु के रूप में आके फिर ही किक्स अस आउट, गेट आउट नाउ गो इनटू अनदर बॉडी, कि जो मैंने सेटअप बनाया है यहाँ पे ये अब खत्म, अब फिर से प्लान शुरू करो, नया प्लान, नया एफर्ट। तो वो निराशा होती है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से इस लेवल पे आया या ये भौतिक अचीवमेंट प्राप्त की और वो अभी खत्म चली गई, अब कुछ नहीं है, जीरो, तो निराशा। और कारण समझ में नहीं आएगा तो मैं सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाऊंगा, मतलब सॉल्यूशन के लिए रीजन कॉज को कैच करना होता है। किसी भी आप डॉक्टर के पास जाओ या किसी कंसल्टेंट के पास जाओ तो ये एक तरीका होता है सॉल्यूशन देने का, कि कारण पकड़ना, पहले कारण क्या है फिर उस पर काम करना। तो कारण समझ में नहीं आता और कारण भगवद्गीता में स्पष्ट, तो पहले बोले कारण स्पष्ट उल्लेख किया गया है भगवद्गीता में, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, बस सिंपल है। तो ये साधु संग करने का ये फायदा है कि हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। साधु किसी कंसल्टेंट की तरह मतलब अपना कुछ अपना वो मोटिव अपना उद्देश्य भौतिक उद्देश्य रख के ज्ञान नहीं देता, उनको जीव पे करुणा की वजह से उनको सलाह या जो भी संग देता है तो उसमें ये ज्ञान प्राप्त देता है, संग में ज्ञान प्रदान करता है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि भौतिक जीवन में हमें प्रयास करने के बाद अल्टीमेटली निराशा ही प्राप्त होती है. उसके लिए कारण ये बताया, देवी ईर्ष्या गुणमयी मम मायाधिपत्य, कि माया को ओवरकम करना, पार करना द्वितीया इम्पॉसिबल है. कैसे पार कर सकते हैं ये आगे भगवान खुद बता रहे हैं, सॉरी रूपा जी बता रहे हैं. सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकं शरणं व्रज, तुम सुख प्राप्त करने और दुख भोगने की योजना मत बनाओ. सर्वधर्मान प्रत्यज का मतलब, वैसे तो श्लोक का ट्रांसलेशन कुछ और है, रूपा जी मतलब लिख रहे हैं, सुख प्राप्त करने और दुख भोगने की योजना, दुख भगाने की योजना मत बनाओ. सर्वधर्मान प्रत्यज मतलब ये, सुख प्राप्त, भौतिक सुख प्राप्त करने और दुख भगाने की योजना मत बनाओ. तुम इसमें कभी सफल नहीं होगे, केवल मेरी शरण में आओ. किंतु दुर्भाग्यवश भगवद गीता के इस स्पष्ट रूप में दिए गए आदेश को वह स्वीकार नहीं करता. इस तरह मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियमों का नित्य बंदी बन जाता है. तो हालांकि ये स्पष्ट है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किंतु मूर्ख होने के कारण, और फिर मूर्ख की तरह वो फिर से प्रयास करना शुरू कर देता और सुख दुख भोगता रहता. तो जो मुक्त आत्माएं हैं या जो साधु हैं, असली साधु हैं, उनका संग करने से हमें अपनी अज्ञानता से बाहर निकल सकते हैं और पूरे मतलब जो भी हमारे भौतिक कष्टों का कारण है उससे छूट सकते हैं. ये लास्ट में एक और लाइन लिखी हुई है, जिस प्रकार चक्र नीचे कभी ऊपर, उसी प्रकार पृथ्वी के कठोर नियम जीव को सुखी दुखी, सुख दुख के चक्कर में वह कष्ट उठाता है. तो प्रभुपाद जी इसको समझने के लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो बीच जो समुन्द्र के किनारे रेत है वहां पे रेत से घर बनाता है, और घर बन गया या कुछ उसका जैसा उसकी इच्छा थी वैसा एक डिजाइन तैयार हो गया, तो बड़ा खुश होता है, हंसता है, मतलब खुश होता है, प्रफुल्लित होता है. और फिर थोड़ा सा कुछ पानी आ गया तो वो गिर जाएगा, है ना, तो वो दुखी होगा, रोना शुरू कर देगा. पहले खुश हो रहा था, अभी रोना शुरू कर दिया. और मान लो उसके बड़े व्यक्ति कोई खड़ा है, उसके पिताजी खड़े हैं, तो वो देखेंगे ये क्या कर रहा है, एक तो टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, और दूसरा कि फालतू में खुश हो रहा है, फालतू में दुखी हो रहा है, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही बस अपने मन के भ्रम के कारण कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, कोई कारण नहीं है. तो हंसी आएगी उसमें. तो उसी तरह से ये बद्ध जीव कंडीशन सोल की स्थिति है कि जो ज्ञान में व्यक्ति हैं वो समझ सकते हैं कि ये इतना एफर्ट कर रहा है, अल्टीमेटली थोड़ा सा पानी आना है और इसका ये घर बह जाएगा, तो कोई कारण नहीं है, अभी ये बड़ा खुश है ना, बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि हाँ मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पहुंच गए हैं. तो अभी कुछ सालों की बात है, उसके बाद पीछे क्या है वो उसको नहीं दिख रहा. तो इसलिए ये भक्तों का संग करना जरूरी है, जहां से हमें प्रॉपर ज्ञान मिलेगा. अभी ज्ञान के द्वारा हमें क्या समझाया जाएगा, एक तो ये समझाया जाएगा कि मैं ये जो मटेरियल एफर्ट है ये निराशा लेके आने वाला है, और दूसरा फिर इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो ये प्रकृति हमें छोड़ देगी. एक बार एक महाराज इसको समझा रहे थे बड़े अच्छे एग्जांपल से कि जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है, भगवान के अंडर है, मैं अध्यक्ष हूं प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है. तो महाराज बता रहे थे कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर ड्रॉप करते थे किसी के लोगों के घर में. तो एक घर था बड़ा सा, उनका एक बहुत बड़ा कुत्ता था, बहुत काफ़ी ऊंचा कुत्ता था, तो उनको डर लगता था उससे, तो उन्होंने मालिक को बोला कि इसको बांध दिया करो, मतलब मैं जब फेंकता हूँ तो ये डराता है। तो मालिक ने बांध दिया, सॉरी मालिक ने बोला कि आप अंदर आके प्रॉपरली एक जगह पे छोड़ के जाया करो, ऐसे फेंकना नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये कुत्ता है, मैं इसलिए नहीं अंदर आता, तो बांध दो। ठीक है, बांधना शुरू कर दिया। तो महाराज बोले थे कि एक बार क्या हुआ कि मुझे तो पहले कुत्ते से बहुत डर लगता था, एक बार क्या हुआ मैं अंदर गया और कुत्ता भौंकना शुरू हो गया मेरी तरफ, और उसने मतलब जोर से अपना वो चेन तोड़ दी। और पहले इतना बड़ा था, महाराज बोले थे घोड़े के साइज का था। तो चेन तोड़ दी, और अभी महाराज बोले मेरी सांस मतलब बंद हो गई, रुक गई। तो मैं मतलब भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर भाग जाऊं, क्यों अभी कुछ नहीं कर सकते। तो बाय चांस भगवान के अरेंजमेंट से ऊपर से वो मालिक आ गए। तो मालिक ने देख लिया कि नीचे क्या चल रहा है, तो मालिक ने कुत्ते को पुकारा, मतलब उसका नाम लेके पुकारा, और मालिक नीचे आ गया। फिर कुत्ता जाके मालिक के पाँव चाटने लगा, मतलब पूंछ हिलाने लगा। तो महाराज से ये एनालॉजी बता रहे थे कि माया जो कि रेडी है हमें गलत करने के लिए, और भगवान, तो माया से मैं लड़ नहीं सकता अपनी शक्ति से, निराशा ही हाथ लगेगी, हार ही जाऊंगा, निराशा, हारना मतलब निराशा। तो लेकिन जब भगवान चाहेंगे तो भगवान बोलेंगे इसको छोड़ दो, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है माया को ओवरकम करना। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल था ये इस चीज़ को समझने के लिए कि माया हमें छोड़ देगी अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, और यही एक प्रॉपर तरीका है। अपनी योजनाओं से, अपने स्किल से माया को ओवरकम कर पाना इम्पॉसिबल। ओके, कुछ ऐड कर सकते हैं कमेंट्स में?
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बड़े अच्छे एग्जाम्पल बताया आपने। भैया आपने एक चीज बताया था कि हमारी श्रद्धा के अनुसार हमारी इच्छाओं का सृजन होता है, मतलब इच्छाएं होती है हमारी, तो इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं?
श्रद्धा के अनुसार इच्छाएं? नहीं नहीं, इच्छाओं के अनुसार श्रद्धा। भगवद्गीता में है तस्य अचलाम श्रद्धा, जो देवी देवताओं की पूजा हम क्यों करते हैं? भगवान बोलते हैं काम हृदय ज्ञान, है ना, काम की कोई भावना होती है इसलिए। अभी पूजा करने के लिए मुझे कुछ डिटर्मिनेशन चाहिए, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, मतलब थोड़ी श्रद्धा चाहिए, थोड़ी नहीं काफ़ी श्रद्धा चाहिए, काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो श्रद्धा क्यों आई? क्योंकि मेरी मतलब भगवान ने क्यों दी? क्योंकि मेरी लस्ट की इच्छा थी, लस्ट था, या कोई काम की इच्छा थी, तो वो पूरा करने के लिए अभी एंडेवर भी चाहिए ना, तो श्रद्धा चाहिए, तो वो भगवान प्रोवाइड करते हैं। मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो कुछ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, तो उतनी श्रद्धा भी चाहिए, तभी सेक्रीफाइस करूँगा, है ना, तो वो भगवान अरेंज करेंगे मेरे लिए। मतलब मेरी इच्छा है तो जो भी कंड्यूसिव है, जैसे जैसे मान लो हमारे मन में कुछ गलत भावना आ रही है चोरी करने की, कुछ एग्जाम्पल तो माँ प्रसाद चोरी करने तो अभी इच्छा अभी अभी प्लान बाद में आता है, इच्छा पहले आ जाती है, अभी प्लान बाद में आएगा कैसे कर सकता हूँ, कितने बजे, कौन कहाँ पे, है ना, वो बुद्धि चाहिए, बुद्धि वो सारा भगवान अरेंज कर रहे हैं। इसी तरह से जो राइट डायरेक्शन में जो एडवांसमेंट की इच्छा है वो भगवान अरेंज कर रहे हैं। वाला संग वैसी बुद्धि, कौन सा गुण हमें आकर्षित प्रकट होएगा और मैं कैच करूंगा, फिर फॉलोअर के नाम तक पहुंचूंगा। ओके, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कि वन थिंग, शायद एक पास्ट टाइम है, किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि एक चीज बताइए जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोले इच्छा, डिजायर है। तो नीचे आने की भी इच्छा, यही इच्छा ही कारण है, वापस जाने के भी कारण होगी। कुछ कमेंट्स? थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांग। श्री प्रभुपाद की जय।